ओम शांति। तो आज एक जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है ये पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 है, डेट है 21 जनवरी 1971, उस मुरली से प्रश्न है, सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए कौन से पॉइंट याद रहे। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए कौन से पॉइंट याद रहे। तो इसके उत्तर में बाबा ने बताया, उसके लिए जो सदैव संबंध में आते, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। चाहे स्टूडेंट है चाहे साथी है, सबको संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, इच्छा हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। उत्साह कम होने का कारण है औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना। गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। सर्व पर विजयी बनने की युक्ति क्या है। इसी के साथ ही दूसरा भी, विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। जब हर एक के मुख के आवाज को देखते हो तो आवाज देखने से उनके दिल के राज को जान नहीं सकते। दिल के राज को जानने से सर्व के दिलों के विजयी बन सकते हो। दिल के राज को जानने के लिए एक गुण की आवश्यकता है, अंतर्मुखता। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे। जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे तब विजयी बनेंगे। तो 21 जनवरी 1971 की मुरली है, उससे प्रश्न लिया गया कि सदा उमंग उल्लास में और एक रस कैसे रहें, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट हमेशा हमें स्मृति में रहने चाहिए। तो एक रस अवस्था अर्थात क्या, स्थिति ऊपर नीचे ना हो, एक रस ही रहे, भले वो 20 की स्पीड से है, वो बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे यज्ञ इतिहास में हम देखें तो यज्ञ इतिहास शुरुआत से लेकर अंत तक यज्ञ अभी किस मुकाम पर पहुंचा है, तो कितने सारी विघ्न परिस्थितियां आए, लेकिन दिन प्रतिदिन दिनों दिन यज्ञ दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करके विश्व को प्रकाशित कर रहा है। तो एक रस ये नहीं कि जिस चाल से हमने शुरुआत चलना आरंभ किया था उसी चाल पर है, नहीं। एक रस अर्थात जो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ, जो एक सेकंड भी पहले था उससे भी आगे, उसी चाल में नहीं, पुरानी चाल में नहीं। तो गति पुरुषार्थ में गतिमान। तो बाबा कह रहे संबंध में आते हो, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को, एक तो पहली बात बताई कि सबको संतुष्ट करने की इच्छा हो अंदर में, हमारे मन में वो उनके प्रति ऐसी शुभ भावना शुभकामना हो सबको संतुष्ट करने की। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है कि सब हमारे से संतुष्ट रहे, है ना। चलते चलते जिनके साथ हमारे संबंध संपर्क अच्छे भी हैं, धीरे धीरे वो हमारे से बेमुख भी हो जाते हैं, उनको भी संतुष्ट रखना। फिर इसमें एक बात बाबा ने और बहुत अच्छी बताई आगे, दिल के राज को जितना जानेंगे उतना औरों को राजी कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी कला है, किसी के फेस को पढ़कर या किसी के बोल मुख से निकलते हैं तो उस भाषा से उनके संबंध संपर्क में आते हुए उनकी मन की भावना को परख कर उसी अनुकूल उनके साथ व्यवहार में आना, तो ही हम दूसरों को राजी कर सकते हैं। तो इसमें उसमें उसके लिए तीन चार बातें बताई हैं बीच में, कैसे वो हमारे अंदर में भाव आ सकता है कि दूसरे के मन के भाव को जानकर उनको हम संतुष्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक तो बताया कि सदा संतुष्ट करने की उत्कंठा अर्थात एक आंतरिक अंदरूनी इच्छा होनी चाहिए संतुष्ट करने की। सही रूप में, और उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है, जो हमारे इंद्रिय उमंग उत्साह है, वह सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो, यह है मुख्य बात। जिसको भी हम देखें, हमें वास्तव में पता होता है ब्राह्मण जीवन में जब से हम चले हैं तो गुण अवगुण दोनों दिखाई देते हैं हमको, लेकिन हमें क्या उठाना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गुण भी दिखाई देते हैं, अवगुण भी पता है हमको, ही पता होता है कि इनकी चाल चलन कैसी है, बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन अंदर से अवगुण हैं। अगर हम उनका अवगुणों का बखान करते रहेंगे तो एक तो हमारी वो आदत पड़ जाएगी, हमारे भी संस्कार नहीं बदलेंगे, और ही जो हमारे में पहले अवगुण कम थे और ही दूसरे के अवगुण हमारे अंदर आ गए, हमारे अवगुणों में वृद्धि होगी। अवगुण देखने का पुरुषार्थ नहीं, बाबा कहते गुण उठाने हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा में या संसार में भी किसी में देखें तो हर एक आत्मा में कोई ना कोई गुण होता है। अगर हम गुणों को देखने के बजाय अवगुणों का ही चिंतन करते रहते हैं तो हम अपने मन के अंदर व्यर्थ का किचड़ा और ही भर रहे हैं, और किचड़ा भरने से क्या आएगा, दुर्गंध आएगी ना, तो स्वयं को भी नुकसान कर रहे हैं, वायुमंडल को भी नुकसान, और जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में, उसको भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुभ भावना शुभ कामना कहां गई फिर वो। तो बाबा कह रहे हैं के संबंध में आते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट है चाहे कोई सेवा साथी है, सबको संतुष्ट करने की इच्छा हो, और ये तब पूर्ण होगी जब बाबा ने कहा हर समय गुण उठाते रहेंगे। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। तो पहले हमारे इंद्रिय संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि हमें किसी का अवगुण नहीं उठाना है, हर एक के अंदर गुण देखने हैं। और वास्तव में हर ब्राह्मण आत्मा गुणवान तो है ही है, क्योंकि ये ब्राह्मण आत्माएं हैं वो हैं जो सर्वगुण संपन्न वाली है, और हमको एक भी गुण ना दिखाई दे तो क्या कहेंगे फिर तो हम खुद ही ब्राह्मण नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं हर समय गुण उठाते रहो, चाहे सामने वाला अवगुण में दृढ़ है तो दृढ़ता भी तो उसमें एक गुण दिखाई दे रहा है ना, कितनी बड़ी बात है। वो अपने उसमें दृढ़ है तो वो भी हमको कई बार हम देखते हैं कि सचमुच सामने वाला कितना दृढ़ है और हम इसमें हलचल में हो रहे हैं, तो दृढ़ता भी तो एक गुण है ना, तो उसको हम उठाएं। तो हर्ष में गुण उठाते रहो, सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। यह मेन मुख्य बात कि सबके गुणों का बल मिलने से, जितने भी हम लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं उनके हम गुण देखते हैं तो वो हमको बल मिलेगा, किसमें, उमंग उत्साह में रहने के लिए। उत्साह कम होने का कारण, अब ये मुख्य बातें जो बताई हैं, और के औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप देखते हैं हम, जो ओरिजिनल स्वरूप है सामने वाले का उसको ना देखकर उसको नजरअंदाज करते हैं, उनके अलग अलग रूप देखते हैं। क्या देखते हैं, भिन्न भिन्न बातों को देखते हैं, सुनते हैं। गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह में रहेंगे। तो सामने वाले की बातों को अगर हमने चित्त में रख दिया तो हमारे चित्त की मनोदशा भी कैसी हो जाएगी, हमारा चित्त भी मलिन हो जाएगा, अवगुणों का वो खजाना बन जाएगा। अवगुणों के अंदर चिंतन करते रहेंगे तो वायुमंडल को ही खराब करेंगे और अपना समय भी वैसे जाता रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं किसी की बातों को नहीं देखना है। हाँ, अगर हम बातें दिखाई दे रही हैं तो कम से कम इतना प्रयास कर सकते हैं वो बातें हमारे में ना हो, चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, और जब हम स्वयं को चेंज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होने के लिए प्रेरित जरूर होगा वो, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे, तो ना सुनने हैं ना देखने हैं, गुण देखने की उत्कंठा हो, एक रस उत्साह रहेगा। फिर गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे, विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है, सामने वाले के दिल के राज को जानना है तो हम विजयी बन सकते हैं, कि सामने वाला क्या इच्छा रखता है, हमारे से क्या अपेक्षा रखता है, उसी अनुकूल हमारा उसके साथ व्यवहारिकता हो, उसी अनुकूल हमारे विचार हो, हमारे कर्म हो, उसी अनुकूल हम उनकी इच्छाओं को पूरी करने का पूरा समय पर सहयोग दें, मदद करें। तो बाबा कह रहे हैं विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है, और जब हर एक के मुख के आवाज को देखते हो तो आवाज देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकते। अगर मुख के आवाज को देखते हैं तो फिर दिल के आवाज को नहीं जान सकते। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, दिल के राज को जानना है, जमीन आसमान का फर्क। ये हमने कई बार अनुभव किया है, जो भी हमारे विचार चल रहे हैं सामने वाले के भी विचार भी वही होते हैं, लेकिन इसमें बाबा ने बताया आगे एक गुण बताया, वो गुण होना बहुत जरूरी है, वो है अंतर्मुखता। और जो मुख का राज बताया, मुख के द्वारा हम किसी के जो बताया पहले अवगुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो करने के बजाय अगर गुणों का हम चिंतन करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके अवगुणों का चिंतन करने के बजाय उसके गुणों का चिंतन हम वायुमंडल में प्रसारित कर रहे हैं, उनको लोगों को भी हम दूसरों को भी बता रहे हैं कि फलाने में ये गुण है, अवगुण के बजाय। मान लो अगर हम कहीं बैठे हैं और किसी के अवगुण के बारे में कोई चिंतन कर रहा है, लेकिन हमारे में उन अवगुणों को परिवर्तन करने की एक अगर हमारे में अंदर तरीका है, बदलने का तरीका है, तो हम उसके मुख के आवाज को बंद करके बल्कि दिल की आवाज को पहुंचा रहे हैं। अर्थात उसके दिल की आवाज क्या है, जो बाबा ने कहा ना, दिल के राज को नहीं जान सकते मुख की आवाज से। इसके लिए आगे एक और गुण होता है, अंतर्मुखता चाहिए इसके लिए। अंदर ही अंदर हम मुख, अंदर ही अंदर कितना हम चिंतन कर रहे हैं, अंतर्मुखता, अंतस की गहराई। तो दिल के राज को जानने से सर्व के दिलों पर विजयी बन सकते हो, और दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना राज को जानेंगे उतना फिर सबको राजी कर सकेंगे। लंबे समय से हम संबंध संपर्क में आते हैं तो हम दूसरे के मनोभाव को तो जान जाते हैं ना, कि सामने वाला हमारे से क्या अपेक्षा करता है, वो कैसे राजी रह सकता है। तो उस तरीके से अगर हम व्यवहार में आते हैं तो फिर बाबा कह रहे हैं जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे। जैसे मान लो आपको मालूम है कि मुझे कौन सी चीज खाने वाली पसंद है, 2-5 बार अगर मैं आपके संबंध संपर्क में आता हूं तो आपको पता तो चल जाएगा ना, तो फिर आप उसी अनुसार देंगे तो आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, एक दो को राजी कर देंगे नहीं कर देंगे। तो ये तो है भोजन खाने पीने की बात, लेकिन संकल्पों का भोजन, अगर हमारा अंतर्मुखी अवस्था है, सूक्ष्म रूप से है, तो दूसरों के विचारों को भी जान सकते हैं कि मेरे विचार आपके प्रति कौन से चलने चाहिए, आपके विचार भी मेरे प्रति कौन से चलने चाहिए। तो संबंध संपर्क में जो बाबा ने ऊपर बताया, चाहे स्टूडेंट है चाहे सेवा साथी है, कभी भी संबंध संपर्क में आते हैं तो विचारों को भी हम एक दो के विचारों को समझ सकें कि हमारे से दूसरे कौन से विचार चाहते हैं। तो जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे तब विजय बन सकेंगे। तो ये तो बाबा के अनुसार में था। इसके अलावा और कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जो हमारी अवस्था को एक रस बनाए, कौन सी स्मृतियां कहो, पुरुषार्थ कहो, कौन से पॉइंट्स कहो, कौन से हो सकते हैं? तो उसके लिए पुरुषार्थ में निरंतर प्रगति होनी चाहिए। उसके लिए एक तो बाबा ने बताया गुण ग्राह की दृष्टि, सबके प्रति सबके अंदर जो गुण हैं वो लिखने हैं। और कई बार पहले वर्कशॉप हुआ करती थी कि एक दो के गुणों का चिंतन, कई बार दादियां भी कहती थी कि आपस में बैठो और एक दो के गुणों की माला का वर्णन करो कि आप में कौन कौन से गुण हैं। अगर हम गुणों की माला का वर्णन करते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण चेंज होता है, बल्कि मान लीजिए मैं किसी एक पर्सन के इसी सभा में अगर गुणों का बखान करता हूं तो उसके प्रति सबका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, जो हो सकता है दूसरे को पता नहीं हो उसके गुणों का हो, और हम उसका चिंतन करके बताते हैं सामने वाले के गुणों का, तो सबके प्रति हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है जैसे उसका। तो एक तो गुण ग्राह की दृष्टि हो, और किसी के अवगुण हमारे चित्त पर ना हो, और दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच हो। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और ये आगे बढ़ाने की सोच कब होगी? जब हमारी अवस्था एकरस होगी। अगर हमने उस अवस्था का अनुभव नहीं किया, आज भी की मुरली में भी है एकरस अवस्था के लिए, कौन सा मंजू बहन जी आज की मुरली में भी एकरस अवस्था के लिए विशेष बात बताई बाबा ने। बाबा ने कहा अगर कोई 7 रोज भट्ठी में बैठे तो एकरस अवस्था हो सकती है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है बाबा ने कहा। हाँ, उसमें 7 दिन का बताया, भागवत का कथा करते हैं या गुरु ग्रंथ का पाठ करते हैं तो 7 दिन का बताया, 7 दिन की भट्ठी का भी ये प्रचलन यहां से निकला है। तो बाबा ने कहा मुश्किल है एक रस अवस्था बनाने के लिए, लेकिन कोई मेहनत करे तो जरूर होगा। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए एक तो हमारी सोच भी दूसरों को आगे बढ़ाने की हो तो हमारी एक रस अवस्था हो सकती है, और दूसरा एक और चीज, सबके प्रति समभाव दृष्टि। अगर समभाव दृष्टि नहीं है उसमें तीन चार बातें होती हैं, या तुम क्षेत्रीयवाद में आते हैं या भाषावाद में आते हैं, किसी स्टेट का हूं, फलाने गांव का हूं। उस दिन बाबा ने कहा ना कि फलाने गांव की आत्मा का ताला खोले, किसी ने नहीं कहा। देश की आत्मा का ताला ये नहीं हम कहते हैं, हमारे घर वालों का ताला खोलो, भाई का, भाभी का, पत्नी का, फलाना ढिमका जो भी है। तो वो करने की बजाय हमारा समभाव दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है। हमने देखा अगर जो क्षेत्रीयवाद और भाषावाद के विचारों वाले होते हैं प्रगति नहीं हो पाती है। जब तक इन चीजों से छूटेंगे नहीं प्रगति होगी, कभी भी नहीं होगी। तो खुशी मिलेगी थोड़ी देर की, लेकिन अल्पकाल की खुशी सदा काल की खुशी को नष्ट कर देगी फिर वो। तो एक तो दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच, और दूसरों को सम्मान देना और उनकी विशेषताओं को कार्य में लगाना। सामने वाले की विशेषताएं दिख रही हैं, उसी अनुकूल उनके विशेषताओं को वर्णन करके उनको कार्य में लगाना। संतुष्टता और सरलता, ये भी जीवन में बहुत सारे दो गुण बहुत जरूरी हैं। एक तो हमारी नेचर ईजी होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। वातावरण जिस तरीके से है उस तरीके से हम उस वातावरण में ढल सकें, दूसरों के साथ मिलजुल के चल सके। किनारा नहीं करना, अगर हम किनारा करते हैं तो भी हमारी अवस्था एक रस नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार वाले भाई बहने हैं, तो उनके साथ मिलके चलना, अपना परिवार का हिस्सा समझ के चलना, जैसे हम एक ही शरीर है, जैसे पूरा यज्ञ एक ही शरीर है जैसे, तो अपने शरीर को जैसे हम दुख नहीं देना चाहते हैं, ऐसे पूरा यज्ञ भी तो एक ही है ना, एक ही हाथ की उंगलियां सभी, तो कैसे दुख दे सकते हैं उसको। तो सरलता, एडजस्ट होकर चलना, और समय पर सहयोग देना, सहायता करना, मदद करना। और एक मुख्य बात है साक्षी भाव, अति आवश्यक है। दिन प्रतिदिन जिस तरह से परिस्थितियां परिवर्तन होती जा रही हैं, उसमें साक्षी भाव बहुत जरूरी है। और ना केवल दूसरों के प्रति साक्षी भाव, बल्कि स्वयं के प्रति भी साक्षी भाव। जो स्वयं के पिछले संस्कार है उनको भी साक्षी होकर देखेंगे। केवल कहते हैं ना कि उनके ऊपर केवल नजर ही डालो, और नजर डालने से वहीं ठहर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो स्वयं के प्रति भी साक्षी भाव, जब हम रहते हैं इस बॉडी को भी, इस तन को भी, अपने पुराने स्वास्थ्य संस्कार को भी साक्षी होकर देखते हैं, तो जैसे हम इस बॉडी से डिटैच होने का सहज प्रयास कर सकते हैं। और एक और मुख्य बात, ड्रामा। ड्रामा के राज को हमें कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ड्रामा ये विविधतापूर्ण है, ये ड्रामा एक्यूरेट है, जो हो रहा है वही होना चाहिए। इसमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। और दूसरा और एक मुख्य बात, इसमें सबका पार्ट अपना अपना है, हम चेंज नहीं कर सकते किसी को, केवल शुभ भावना कामना रख सकते हैं, और वो हमारा ड्रामा में पार्ट होना चाहिए। और ये ड्रामा और क्या है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है, और इस ड्रामा में सभी निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष है। इस ड्रामा में सब संपूर्ण निर्दोष हैं, और ड्रामा ऊपर वाले को पसंद है तो हमको क्यों पसंद नहीं आना चाहिए। फिर ऐसा ही होगा, हाँ, तो वो उल्टे तरीके से, इसलिए ड्रामा ने बाबा ने ड्रामा को लास्ट में रखा हुआ है। लेकिन अगर पहले उसका उपयोग करते हैं तो वो कुल्हाड़ी अपने पांव पर ही मार लेते हैं, तो ये लास्ट में अपने बंधनों को काटने के लिए। तो इस ड्रामा को भी अपनी बुद्धि में रखना है। और ये ड्रामा में एक और चीज हमको स्वीकार करनी है, रिपीटेशन है। और दूसरा मुख्य बात है हिसाब किताब, जो स्वयं के प्रति, दूसरों के हिसाब किताब तो देखने में सहज लगते हैं, जब स्वयं के ऊपर आती है बात आती है तो हमको पता चलता है। तो जो भी हमारी हमें शारीरिक व्याधियां आती है, मानसिक व्याधियां आती है, पुरुषार्थ में अपडोन होता है, उसको स्वीकार करना कि ये हमारे में है, उसको खुशी खुशी स्वीकार करके उनका निदान हमको खुद ही करना है। हिसाब किताब तो सबके साथ में आएंगे ना, सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा वहां से लेकर तो हर यज्ञ के ब्राह्मण वत्स के साथ हिसाब किताब तो सामने आना ही आना है। तो दूसरों के हिसाब किताब को देख के भी हमको हलचल में नहीं आना है, तो ही हम अपने हिसाब किताब को भी उससे हम पाठ सीखें कि कैसे यज्ञ इतिहास में देखेंगे कि सारी महान विभूतियां हुई हैं, दादियां हुई हैं, जिन्होंने हिसाब किताब खुशी खुशी चुक्त किया है। बल्कि हमको लगता था कि ये हिसाब तो इतना बड़ा कड़ा है, इतने योग्य तपस्वी आत्माएं हैं, फिर इनको हिसाब किताब क्यों आ रहा है। लेकिन उन आत्माओं की मनोस्थिति, मनोदशा इतनी ऊंची थी कि हिसाब किताब उनके चेहरे पर नजर नहीं आया। जैसे रिसेंटली हमने देखा जो संजय भाई थे, जो सिक्योरिटी थे, तो उनका हमने देखा क्यों उनकी अवस्था एक रस रही, एक तो उनको कभी भी हमने सेवा पर अनुपस्थित नहीं देखा, हमेशा उपस्थित देखा, और दूसरा जो भी उनका टाइम होता था थोड़ा बहुत कभी वेस्ट करते नहीं देखा उनको। थोड़ा टाइम भी होता तो बाबा के कमरे में देखते थे, हम बैठते थे, वो है ना, तो एक्यूरेट रहे। और कभी भी उन्होंने अपने अपने को ज्ञान योग को अपने से जुदा नहीं किया, इसलिए जब हम उनको हॉस्पिटल में देखने जाते थे तो देखो उनका हालचाल पूछने से पहले वो अपने मुरली के पॉइंट सुना देते थे और चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। तो ऐसे देखते हैं हम, अगर हिसाब किताब अगर हमें आ ही रहे हैं तो खुशी खुशी उनको चुकतु तभी कर सकते हैं अगर लंबे समय से हमारा यज्ञ सेवा के प्रति वफादारी से किया हुआ है, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखी है, अपनी सेवा को छोड़कर दूसरे की सेवा में हस्तक्षेप नहीं किया है। नहीं तो वो बहुत सूक्ष्म रूप से, भले सामने वाला कोई नहीं कह रहा है हमको, दूसरे की सेवा में हस्तक्षेप तो कर रहे हैं लेकिन सामने वाला भले नहीं कह रहा, लेकिन ब्राह्मणों का अगर संकल्प उठ गया हमारे प्रति वो एक बहुत बड़ा श्राप है वास्तव में, वो हमको सूक्ष्म में पता नहीं चलता है और वो ही हमारे पुरुषार्थ में बाधक है, आगे बढ़ नहीं सकेंगे, लगेगा धीरे धीरे, लेकिन हमारा धीरे धीरे योग ज्ञान योग धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक्यूरेट भले दिनचर्या चलते रहेंगे लेकिन जो मनोस्थिति है, जो मन हमारा उड़ने लगे, मन को ज्ञान योग के पंख लगे, वो अनुभूति नहीं होगी। इसलिए जितनी सेवा हमको जो पहले मिली है उसको हमको सही तरीके से करना है। तो ये था एक समय पर उदाहरण, ड्रामा के राज, हिसाब किताब को खुशी खुशी स्वीकार करना है और एक स्थिति बनाने के लिए क्रिएटिव माइंड, रचनात्मक, नए नए तरीके से हम ज्ञान मुरली को चिंतन करें, नए नए तरीके से उसको याद करने का प्रयास करें, नए नए दृष्टिकोण से देखें, नए नए तरीके से उसको सुनने का अभ्यास करें, तो भी हमारी जो अवस्था है एक रस रह सकती है, वो मंगलसा में रह सकती है और दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व करें ना, केवल क्योंकि दूसरों के जैसे बताया ना, एक अगर नेगेटिव संकल्प शराब बन जाता है तो एक किसी का पॉजिटिव संकल्प हमारे लिए वरदान भी बन जाएगा, वो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ा देगा आगे। वो तो किसी के पुरुषार्थ को देख के हमको डिसाल्टेड नहीं होना है, वो घृणा नफरत नहीं करनी है बल्कि, और ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये भी कोई आगे बढ़ रहा है और हम उसको और अप्रिशिएट करें, आगे बढ़ाएं बल्कि नीचे नहीं गिराएं, तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और एक चीज़ और, प्रपंच से किनारे रहना, कोई भी प्रपंच नहीं, जितने देखते हैं दिन प्रतिदिन तो प्रपंच तो बढ़ना ही है, कम नहीं होने वाला है क्योंकि परिस्थितियां तो बढ़नी है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उनका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर ना आए। और ये बात बता दी गई, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद और लौकिकता से ऊपर उठकर रहना। हमारे हमने देखा है ये जब से डिजिटल वर्ल्ड आया है, इसके पहले नहीं था, जब मोबाइल व्हाट्सएप नहीं थे तो लैंडलाइन भी फोन हुआ करते थे, तो हम देखा जो ज्ञान योग था तो अधिकतर बहुत ही अच्छा चलता था। हम खुद के अनुभव की बात करते हैं, अभी विशेष अटेंशन रखना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता था, मोबाइल तो है ही नहीं है तो युग में उठाएगा कौन, घर वाले फोन करेगा कौन, कोई नहीं करेगा, और पता भी नहीं होता, तो अगर फोन आता भी है तो एक्सचेंज में आता था और वो भी अनाउंसमेंट करते थे। तो पहले जो ज्ञान योग की जो एक हमारे जो मन खींचता ही नहीं था उधर, लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम किसी को आज मैसेज कर देते हैं तो पूरा दिन उनकी बुद्धि में वही चिंतन चलता रहेगा, और खुद ही हमने जो पुराने साक्षात छोड़ रखे थे फिर से नए क्रिएट हो जाते हैं नए नए तरीके से। तो इनसे भी हमको थोड़ी दूरी बना के रखना, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत दूरी बना के रखना अति आवश्यक है ये। और मनन चिंतन में स्वयं को व्यस्त रखने की कला हो किसी भी तरीके से, जो भी अनेक तरह के हमने यहां विधियों का या मेथड का जो हम चिंतन करते हैं, किसी ना किसी तरीके से मोदी से प्रश्न उत्तर निकालने, सोमान निकालने, फिल इन द ब्लैंक्स निकालने, उसमें एग्जाम्पल निकालने, जो भी कथा कहानियां हैं, कुछ भी तरीके से, जैसे कल की मुरली में पूरी मुरली एक वैराग्य के ऊपर थी, ये शरीर कैसा बन गया, खंडहर बन गया है, लोहे की काया है, पुरानी जुत्ती है, ये कोई काम का नहीं रहा है, तो सारे इस तरह के जो वैराग्य जो हम देखते हैं हमारे में जिन धारणाओं की कमी है, जैसे वैराग्य की कमी है, तो उन्हीं पॉइंट को हम कलेक्शन करके अलग करके अपने मन ही मन में दोहराएं, तो भी हम एक स्थिति में स्थित रह सकते हैं, तो भी हमारी प्रगति रह सकती है, उमंग उत्साह में रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मनन चिंतन में स्वयं को व्यस्त रखने की कला भी आवश्यक है। जो भी कार्य हो उसे समय पर करने की भी एक जरूरत है। जो भी हमको सेवा मिलती है पूरा पुरजोर कोशिश करके उसको हम समय पर करें तो भी ठीक है। और एक स्थिति के लिए अशरीरीपन का अभ्यास, बीज रूप स्थिति, जितना हम इस बॉडी से डिटैच होते हैं अपनी ओरिजिनल अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो उस अवस्था में, क्योंकि बीज रूप अवस्था एक रस अवस्था है, तो लंबे समय तक उस अवस्था में टिकने से जब आत्मा को उसका रस अनुभव होने लगेगा, तो इस बॉडी में रहते हुए भी हम संबंध संपर्क में आते हुए भी उस अवस्था की स्मृति में रहने से दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, दूसरों को भी मोक्ष में ला सकते हैं। अगर हमने खुद ही उस अवस्था का अनुभव नहीं किया है, खुद ही उस अवस्था की अनुभूति नहीं की है, तो फिर दूसरों को भी कैसे करेंगे? तो भी मोक्ष नहीं रहेगा। जो भी हमको कार्य मिलता है, चाहे वो मुरली में मिल रहा है चाहे सेवा में, उसको भी हम निष्ठापूर्वक करते हैं तो भी हमारी एक रस अवस्था बनी रहेगी। नहीं तो बताया ना, कोई अगर किसी का संकल्प उठता तो क्या होगा, फिर शराब हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो हमारी अवस्था को एक रस, तो एक तो इसमें बाबा ने बताया कि एक तो सबके प्रति सबके क्या देखने हैं, गुण देखने हैं, और सबके गुण देखेंगे तो ही हम दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर हम गुण नहीं देख रहे हैं, आप गुणों का चिंतन कर रहे हैं, तो सामने वाले का भी हमारे से मुख टेढ़ा ही रहेगा, भले सामने मुस्कराया हुआ हो लेकिन अंदर से तो वैसे ही होंगे ना। तो कोई कैसा भी है, सबको अपना समझ के चलना है। तो एक तो सबसे गुण उठाने हैं, और किसी के अवगुणों का चिंतन नहीं करना है, ना देखना है ना सुनना है। दिखाई तो देंगे, है ना, जैसे कूड़े का ढेर आ रहा है तो दिखाई तो देगा वो, लेकिन हम खड़े होकर सूंघेंगे थोड़ा, वहां निकल जाएंगे ना। ऐसे अवगुण तो दिखाई देंगे लेकिन हम चित्त पर नहीं धरेंगे वो। जैसे अगर गुणों का चिंतन लंबे समय से किया तो अवगुण तो दिखाई देगा लेकिन हमारे चित्त पर नहीं आएगा। हमको पता भी वो अवगुण अगर उसमें है तो हमारे भी में तो था पहले, हम कौन से पहले दूध से धुले हुए थे, ये यहाँ के तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, पहले क्या थे, कौन से खेत की मूली कहते ना, ऐसे थी। तो बाबा ने हम सबके अंदर जो गुणों से हमारा श्रृंगार किया है, गुणों से भरपूर किया है, तो दूसरों को भी दूसरों के अवगुणों को न देखते हुए दूसरों को भी गुणों को देखने का प्रयास करें, है ना। तो ये चीज होगी। और एक बताया कि अंतर्मुखता, जितना मंत्रमुखी होके अशरीरी बन के बाबा की याद में रहेंगे, जो बाबा ने बताया आज की मूल्य में 7 रोज की भट्टी, जितना निरंतर प्रयास करेंगे याद की यात्रा में रहने का, तो हमारे मन बुद्धि रिफाइन होते जाएंगे, और तो भी अवस्था एक रस उमंग सा में रहेगी, और तो ही हम वायुमंडल को शक्तिशाली बना देंगे। और एक कुछ ये बातें की कि एक तो साक्षी भाव हो गया, ये हमेशा हमको इसका स्मृति में रखना है, साक्षियों के ड्रामा को देखना है, ड्रामा के जितने भी राज हैं वो भी हमारी बुद्धि में रहने चाहिए, और ये बहुत हल्का करते हैं ड्रामा के राज भी। जितना हम सवेरे शाम जब भी हमको मौका मिलता है जितना भी हम इतना चिंतन करें, तो ये बुद्धि में रखने ड्रामा के राज। हाँ, हर चीज में पॉजिटिव, बाबा ने कहा ना कल्याण, अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण छिपा हुआ है, तो उसको देखने का हमको तरीका आना चाहिए कि कैसे इसमें अकल्याण है और कैसे इसमें कल्याण समाया हुआ है, उस अकल्याण के पीछे भी कल्याण कैसे है ना। जैसे किसी की टांग टूट गई है तो चलो मृत्यु तो नहीं ना हुई, टांग ही तो टूटी है, तो इस तरीके से कोई भी अगर परिस्थितियां आती हैं तो कल्याण है। कई बार हमको हम देखते हैं अगर हम मेडिटेशन में बैठे हैं, अगर कोई उठा देता है तो कैसे कल्याण, हमारा बहुत अच्छा मेडिटेशन चल रहा है और हमको उठा दिया जाता है तो क्या कल्याण सोचेंगे इसमें। समय एक तो दूसरे ने हमको उस सेवा के योग्य समझा और उस योग को हम छोड़ के जा रहे हैं तो हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स होनेंगे, और दूसरा हो सकता था जहां हम योग में बैठे वहां कुछ होने वाला था, हमको बचा लिया गया, और तीसरा हो सकता है हमारा योग टूटने वाला था और हमारे योग से सबका योग टूटने वाला हो तो हमको उठा लिया गया वहां से। तो इस तरह से पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव तरीके से सोचे, तो हम ही पहले खुद हलचल में होते थे लेकिन थोड़ा चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे मन को एक संतावना मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए बाबा ने कहा ना हर बात में कल्याण ढूंढना, हमको उस कल्याण ढूंढने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो बड़ी जल्दी हम हलचल में हो जाते हैं कि हमारे पुरुषार्थ में कोई टांग खींच रहा है, हमारा कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसमें कल्याण है। तो ये चीज रखनी है कि हर बात में हमको कल्याण ढूंढना है। और ड्रामा के राज हो गया, अपनी स्थिति अशरीरी और हिसाब किताब को खुशी खुशी स्वीकार करना है, क्रिएटिव माइंड रहना है, प्रपंच से परे रहना है। हाँ, एक मुख्य बात जो बताई, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, लौकिक तक से ऊपर उठ कर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हमारे पुरुषार्थ में बहुत बाधक रहती है ना, और ये छूटता शायद नहीं। हम देखते हैं अगर हम इतने सालों से ज्ञान में चलने के बाद भी हमारा उसी क्षेत्र के प्रति विशेष झुकाव रहता है, वही भाषा अधिकतर वही निकलती है, वो जो बाबा की भाषा वो निकल नहीं रही है ना। तो कितना बड़ा वो हमारे ये इसके ऊपर रहता है। और बाबा तो शुरू से कहा कि सिंधी बोली तो पापड़ बांध, खैर वो तो एक थोड़ा मनोरंजन के रूप में था लेकिन वास्तव में तो बात तो ही है ना कि हम एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं, तो फिर क्षेत्रवाद कहां से उपज गया, ये कहां हमने छोड़ा वहां से, ये वहां का है, ये वहां का है, वहां का, और देखते हैं अगर उन बातों का हम चिंतन करते तो खुशी हमारी तुरंत नष्ट हो जाती है। तो इन सब से उठकर रहने का हमको प्रयास करना है। और एक बात की, मनन चिंतन में स्वयं को व्यस्त रखना है, जितना मनन चिंतन करेंगे। और मनन चिंतन अगर ना आए तो लाइब्रेरी से बुक्स ले सकते हैं, कमलेश भाई से दे देंगे आपको। और जो भी हमको कार्य मिले, सेवा मिले, समय पर करना है। और क्या पॉइंट हो सकता है जो हमारी अवस्था एक रस रहे? हाँ, जो हमारा इंटरेस्ट है किसी भी सेवा में और उसमें हम विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, तो उस विशेषता में दूसरों को भी हम इन्वॉल्व करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, उसका वो भी उससे आगे बढ़े। तो इस चीज से दूसरों की विशेषता और अपनी विशेषताओं को भी बांटना है। जैसे बताया ना बाबा ने कहा, गुणों का दान सबसे बड़ा दान है, गुणों का दान। तो ये चीज भी रखनी है। और कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमारा मंगसा हमेशा कायम रहे, अवस्था एक रस रहे? हाँ, एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करना, अपने लक्ष्य को, जो इन्होंने बताया था सबसे पहले कि लक्ष्य हमारा सामने रहे। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, सामने नहीं है, उससे हम विस्मृत हुए पड़े हैं, तो भी हमारा मंगसा नहीं रहेगा, तो भी हम इधर उधर की गलियों में भटकते रहेंगे और हमारी एनर्जी इसमें, टाइम, मनी सब वेस्ट जाता रहेगा। तो लक्ष्य हमारा बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होना चाहिए और उसी पथ पर जो हमने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के तरीके बनाए हैं, उन तरीकों को हम अप्लाई करते चले, आगे बढ़ते चले। तो एक तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और पुरुषार्थ में नवीनता होनी चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। पुरानी चाल पर चलते रहेंगे तो भी व्यवस्था एक रस नहीं रहती है। हाँ, स्वयं को मेहमान समझेंगे, कल की मुरली में भी था ना, अपने हाँ, जो भी यज्ञ इतिहास की महान विभूतियां हुई हैं, जो यज्ञ के प्रति वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्तव्य करके उन्होंने कितना त्याग तपस्या बलिदान किया है, उसके मुकाबले में तो आज हमारा क्या त्याग है। उसमें तो इतना ज्ञान भी स्पष्ट नहीं था, आज तो ज्ञान की ढेरों किताबें बिल्कुल स्पष्ट है। और ये सब रास्ता दिखाई देने के बाद भी हम उस रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कैसे चलना रास्ते पर, जबकि रास्ता बना कर गए हैं, पगडंडी बना कर गए हैं, निशानियां लगा कर गए हैं, इधर इधर से चलना तो यहां पहुंच जाएंगे, उसके बावजूद हम पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे पुरुषार्थ करें तो क्या होगा फिर बताओ। तो यज्ञ इतिहास की महान विभूतियां जो पूर्वज हुए हैं, उनके हम जीवन चरित्र को, जीवन कहानियों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, अनुगमन करें, अनुकरण करें। और हाँ जी, अनुभवों का, दूसरों के अनुभव सुने तो भी हम उत्साह में रह सकते हैं। और हाँ, कॉपी करने से भी, कल कॉपी किया था, परसों हाँ, और हाँ, आगे बढ़ाने का गुण होना चाहिए, दूसरों को आगे बढ़ाने का गुण होना चाहिए और स्वयं को भी आगे बढ़ाने का गुण होना चाहिए। सबसे पहले तो स्वयं को आगे बढ़ाना है, फिर दूसरों को आगे बढ़ाने का जो है मन में वो हमारे विचार पैदा होंगे। और पीछे है समय की स्मृति, समय कौन सा चल रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी, जो मम्मा कहते थे ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, पता नहीं श्वास कब निकल जाएगा, भरोसा तो है नहीं है कोई भी, वैसे वैसे दम निकला पड़ा है सभी का। तो ये समय की स्मृति भी रहे। और हाँ, जो भी हमारे श्रीमत है, दिनचर्या है, उसी अनुकूल हम चलते रहे, उसको हम सामने रखें कि कौन कौन सी श्रीमत मिली है। तो जो बीच में था ना मन चिंतन करने की कला, तो ये हमको स्वयं के स्तर पर ये चिंतन करना है कि कौन कौन सी श्रीमत मिली है, और अपनी गोट तो नशा चढ़े तो ही हमारा मंगसा कायम रहता है। अगर दूसरे के पुरुषार्थ के हम भरोसे रहते हैं तो मंगसा तो रहेगा, लेकिन उतना समय ही रहता है जितना समय हम यहां पर हैं। और जो जहां हमको मंगसा रखना है कर्म क्षेत्र पर, वहां नहीं रहता है फिर, वो वहां क्लास काम विस्मृत हो जाती है। लेकिन जो हम खुद करते हैं वो विचार हमारे अंदर ही रहते हैं अधिकतर, दूसरों के विचार हमारे कान तक रहते हैं, थोड़े बहुत अंदर जाते हैं, लेकिन जो अपने विचार है वो हमारे अंदर ही रहते हैं, उनको कभी भी स्मृति में ला सकते हैं। तो ये है बात कि अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं का भी मनन चिंतन अति आवश्यक है, चार्ट भी जरूरी है। हाँ, स्वयं का चार्ट रखना है कि सारे दिन में हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, हमारे विचार कौन से चल रहे हैं, जो बताया ना बाबा ने कि संकल्पों से भी पुण्य, कर्म से भी पुण्य, बोल से भी पुण्य। तो कल बताना कितना अच्छा टॉपिक है, संकल्पों से पुण्य कैसे कैसे करें, जिधर से हम गुजरे हैं संकल्पों से पुण्य कैसे करेंगे। अगर हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, मान लीजिए हम वॉकिंग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जो भी हमारे साथ से गुजर रहा है तो उसको हम संकल्प से खुशी दें कि ये आत्मा भी खुश हो, इसके भी समस्याओं का समाधान हो जाए, ये भी निर्बंधन हो जाए, ये भी बंधनों से मुक्त हो जाए, बीमारियों से मुक्त हो जाए। सोच तो सकते हैं ना, चलते फिरते भी जैसे चलते चलते उनको खुशी का हम सकाश दे रहे हैं, खुशी के प्रकंपन दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं चलते चलते, संकल्पों से पुण्य अर्जित करने की विधि को ही बढ़ाना हमको, और कैसे मंगसा कायम रहेगा, होमवर्क जो मिलता ना उसको मना नहीं करने का, और होमवर्क मिलने से उमंग सब बढ़ ही जाता है, कभी कभी कोई क्या काम भी हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकर थोड़ा सा गौर करते हैं तो वास्तव में हमारे ये हमारे फायदे के लिए ही है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, इस इधर आए किस लिए है? जो बताया था ना एक बार ड्रामा में, किस लिए आए कब्दोशील? हाँ जी, मेहनत तो करनी पड़ी, बिना मेहनत तो कुछ है नहीं है। बोले सहज योगी जीवन हो तो कहने में सहज है, लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे सहज योगी जीवन तब बनेगा जब अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरेंगे, तो सहज योगी जीवन है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बिना पापड़ बेलने स्वाद आएगा नहीं, और मंगसा कैसे आएगा? और हमारे पास कितना टाइम है ब्राह्मणों का, हम खुद ही देखते ना, इतना करने के बाद भी हमारा टाइम बहुत वेस्ट जा रहा है, अभी जो नहीं जाना चाहिए और कर सकते हैं उसको। हाँ जी, हाँ, किसी की कमी नहीं देखनी चाहिए, तो क्या देखना चाहिए? अच्छाई देखनी चाहिए, जैसे आपकी अच्छाई दिख रही है। ठीक है, ओम शांति।